आज आरव और आयु की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी और साथ ही खुराना मेंशन में आरव्य और आर्या के बर्थ सेलिब्रेशन की पार्टी रखी गई थी। दोनों बच्चे इस वक्त गौरवी जी और छवि के साथ मौजूद थे, जबकि आरव और आयु रूम में अकेले थे। आरव रेडी हो चुका था। उसने बेज कलर का इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहना था क्योंकि पार्टी की थीम इंडो वेस्टर्न ही रखी गई थी। वहीं आयु अब तक तैयार नहीं हुई थी। आयु अपने मोबाइल को चेक करते हुए आरव की तरफ देखकर मुंह बनाकर बोली, मेकअप आर्टिस्ट का मैसेज आया है, उसने बोला कि 2 घंटे और लग जाएंगे आने में। दादी ने कहा था पार्टी से पहले पूजा होनी है और सिर्फ 1 घंटा बाकी है। मैं तैयार होने बैठी तो मुझे 3-4 घंटे आराम से लग जाएंगे। यहाँ कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि किसी पर डिपेंडेंट मत रहो। चलो आओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, आरव ने जवाब दिया। उसने आयु की ड्रेस उठा ली। आयु ने आरव की बात पर हामी भरते हुए कहा, ठीक है फिर मैं चेंज करके आती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं तो तुम मुझे ज्वेलरी तो पहना ही सकते हो। बोलते हुए आयु आरव के पास आई और अपनी ड्रेस लेने लगी। तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। मैंने कहा ना मैं हेल्प करने वाला हूँ, तो सब कुछ मैं ही करूँगा। तुम्हारी ड्रेस भी मैं ही चेंज करने वाला हूँ, आरव ने ड्रेस उठाकर कहा। आयु झट से ना में सिर हिलाकर बोली, पागल हो गए हो क्या? मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होगा। हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे के पास नहीं आए हैं, मुझे अजीब लगेगा। देखो आरव, तुम रहने दो, मैं खुद कर लूँगी। आयु के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव थे। उसे देखकर आरव ने सिर हिलाया और आयु को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हे डोंट बिहेव लाइक अ स्ट्रेंजर। वैसे भी हमारा रिलेशन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बोरिंग सा हो गया है। ऊपर से अचानक से तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा ही ना हो। देखा भी है और हर तरीके से छूकर महसूस भी किया है, तो मेरे सामने शर्माने का कोई फ़ायदा नहीं मिसेस खुराना। हाँ जानती हूँ, और ऐसा तो है नहीं कि हम फिर से करीब नहीं आएंगे, पर फिर भी पता नहीं क्यों शर्म सी महसूस हो गई है, आयु ने जवाब दिया। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। आरव ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और आयु को पकड़कर दूसरी तरफ पलट दिया। वो धीरे से बोला, अगर शर्म महसूस हो रही है तो यह अच्छा तरीका है तुम्हें याद दिलाने का कि तुम मेरी वाइफ हो। मैं तुम्हारी ड्रेस की जिप खोलने जा रहा हूँ, चुपचाप सीधी खड़ी रहना, आरव बोला और आयु की ड्रेस की जिप खोलने लगा। आरव के छूने से आयु की आंखें अपने आप बंद हो गईं। आयु की ड्रेस की जिप खोलने के बाद आरव की उंगलियाँ उसकी बैक पर घूम रही थी। आयु आंखें बंद किए हुए धीरे से बोली, प्लीज़ ये मत करो आरव। क्या ना करूँ मिसेस खुराना, आरव ने एविल स्माइल करते हुए कहा और फिर आयु को अपनी तरफ घुमा लिया। आयु की आंखें अभी भी बंद थीं। आरव ने आयु की आंखों पर किस किया तो उसने जल्दी से आंखें खोली। आयु ने आरव के चेहरे की तरफ देखा तो वो स्माइल कर रहा था। आयु ने हैरानी से आंखें बड़ी करके पूछा, क्या करने का इरादा है मिस्टर खुराना? वही जो तुम सोच रही हो, आरव ने आई विंक करके जवाब दिया और फिर आयु की पूरी ड्रेस निकाल दी। उसने खुद का भी कुर्ता निकाल कर फेंक दिया था। लेट हो जाएंगे आरव, नीचे पूजा है और तुम्हें रोमांस सोच रहा है, आयु ने उसे रोकना चाहा, लेकिन आरव ने उसे बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया था और खुद उसके ऊपर आ गया था। आरव आयु को काफ़ी इंटेंसिटी से किस कर रहा था। आखिर वो दोनों पूरे 5 महीने बाद एक दूसरे के करीब आए थे। आयु भी आरव के साथ उस लम्हे में खोती जा रही थी। किस ब्रेक करके आरव ने आयु की आंखों में देखते हुए कहा, हैप्पी एनिवर्सरी मिसेस खुराना, ट्रस्ट मी, इससे बेहतर तरीके से तुम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर सकती। आयु ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। आयु के होठों पर किस करने के बाद आरव उसकी पूरी बॉडी को अडोर कर रहा था। जहां आरव और आयु को पूजा के लिए नीचे पहुंचना था, वहीं अब दोनों अपनी प्यार भरी दुनिया में खोए हुए थे। पूजा का टाइम हो गया था। पूजा शाम के 6 से 7 के बीच में होनी थी और पार्टी 8 बजे से शुरू हो रही थी। 6 बजने में लगभग 15 मिनट बाकी थे तब गौरवी जी दोनों बच्चों को लेकर पंडित जी के पास हॉल में पहुंची। वहां आरव और आयु को ना देखकर गौरवी जी ने युवानी की तरफ देखकर कहा, आरव और आयु कहाँ हैं और अब तक पहुंचे क्यों नहीं वो दोनों? युवानी जाकर उन्हें बुलाकर लेकर आओ। जी दादी, युवानी ने जवाब दिया। उसने बेज कलर की शिमरी साड़ी पहन रखी थी जिसके साथ स्लीवलेस ब्लाउज था। युवानी तेज कदमों से चलकर आरव और आयु के रूम की तरफ जा रही थी। उस तरफ जाते हुए वो धीरे से बड़बड़ाकर बोली, प्लीज गॉड, आरव सर मुझ पर गुस्सा ना करें। दादी किसी और को भी तो बोल सकती थी ना, हर बार मैं ही उन्हें बुलाने के चक्कर में क्यों फंस जाती हूँ? युवानी को अभी भी आरव से उतना ही डर लगता था। युवानी आरव के रूम के पास आई और खटखटाते हुए धीरे से बोली, आरव सर, आयु दी, क्या बंदर हो? युवानी आयु को दीदी कहकर बुलाती थी। अंदर आयु आरव की बाहों में थी। आरव ने उसे तैयार करने के बजाय उसका काम बढ़ा दिया था। उन दोनों के कपड़े फ्लोर पर बिखरे हुए थे और दोनों ब्लैंकेट में एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। युवानी की आवाज़ सुनकर आयु ने आरव की तरफ तिरछी निगाहों से देखा तो आरव ने आइज रोल कर दी। आयु ने आरव की तरफ देखकर धीरे से कहा, दादी बुला रही होगी, तुम्हें अच्छे से पता है वो रिचुअल्स को लेकर कितना इमोशनल रहती है और ऐसे में देर होने पर मुझे ही डांट पड़ने वाली है। अब मैं नीचे जाकर उन्हें क्या कहूंगी कि अचानक आपके पोते का मूड बन गया और उसने मुझे तैयार नहीं होने दिया? वैसे कह भी सकती हो, झूठ बोलने से बेहतर है सच बताना। रियली आई एंजॉयड अलॉट, आरव ने आई विंक करके कहा। उसकी इस हरकत पर आयु ने उसके हाथ पर हल्के से मारा और बोली, वो क्या है ना, मैं आरव खुराना नहीं हूँ, वरना जाकर बोल देती। बोलते हुए आयु आरव से अलग होने की कोशिश करने लगी, लेकिन आरव ने उसे और कसकर पकड़ लिया।
आयु ने आरव की तरफ देखकर लाचारी से कहा, प्लीज जाने दो, बाहर युवानी खड़ी है। बस इतनी सी बात, आरव ने बेपरवाही से जवाब दिया। तभी बाहर से युवानी ने एक बार फिर आवाज लगाते हुए कहा, दी आप अंदर ही हो क्या? मैं आ जाऊं, आपकी हेल्प कर दूं, अगर कुछ रह गया तो। युवानी की बात का जवाब देते हुए आरव ने तेज आवाज में कहा, सोचना भी मत, जाकर दादी को बोलो कि हमें आने में थोड़ा और टाइम लगेगा, कोई अच्छा सा बहाना बनाना, अगर नहीं समझ आए तो कबीर से पूछ लेना। ओके सर, युवानी ने जल्दी से जवाब दिया और वहां से चली गई। युवानी के जाते ही आयु आरव से बोली, कम से कम घर पर तो उसे डरा कर मत रखा करो। आरव कुछ नहीं बोला और खड़े होने लगा। उसने जल्दी से अपने कपड़े पहने। इस बीच आयु भी बिस्तर से निकल आई थी और अपनी ड्रेस चेंज करने लगी थी। आयु ने जल्दी से अपनी ड्रेस पहनी। उसने बेज कलर के लहंगे के साथ स्लीवलेस ब्लाउज के ऊपर लॉन्ग बेज कलर का नेट का शर्ट पहना था। आयु की ड्रेस चेंज करते ही आरव खोई हुई निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था, तो आयु ने सिर हिलाकर कहा, यहाँ मैंने तुम्हें खुद को घूरने के लिए खड़ा नहीं कर रखा है, चुपचाप मेरी हेल्प करो, इतनी देर में मैं तैयार होकर नीचे जा चुकी होती। आरव ने इविल स्माइल करते हुए आयु की बात पर हामी भरी और उसकी रेडी होने में हेल्प करने लगा। लगभग आधे घंटे बाद आरव और आयु तैयार होकर नीचे पहुंच चुके थे, जहां बाकी सब उनके आने का इंतजार कर रहे थे। आरव और आयु के एनिवर्सरी के साथ आज खुराना मेंशन में दोनों बच्चों के बर्थ सेलिब्रेशन की पार्टी भी रखी गई थी। पार्टी से पहले पूजा थी, जहां पर आरव और आयु थोड़ी देर से पहुंचे। उनके देर से आने पर गौरवी जी उनकी तरफ तिरछी निगाहों से देख रही थी।
आरव ने दूर से कान पकड़कर उन्हें सॉरी कहा और फिर वो दोनों पूजा में बैठ गए। उनके पास में अयान और साक्षी भी बैठे हुए थे। पूजा शुरू होने के बाद गौली जी ने आर्या को आरव की गोद में तो आरव्या को आयु की गोद में दे दिया। अचानक अयान का ध्यान आयु की गर्दन पर गया, जहां पर लव बाइट का निशान बना हुआ था। उसने आयु के हाथ पर धीरे से अपना हाथ रखा और उसके पास आकर दबी आवाज में कहा, अच्छा, तभी मैं सोचूं तुम दोनों को पूजा में आने में देर क्यों हो गई, वैसे यही टाइम मिला था क्या आप दोनों को ये सब करने के लिए? आयु को अयान की बात समझ नहीं आई तो वो कन्फ्यूजन से उसकी तरफ देख रही थी। उसकी नज़रों को समझते हुए अयान ने अपनी गर्दन पर हाथ रखकर धीरे से कहा, एग्जैक्टली, इसी जगह पर तुम्हारे एक निशान बना हुआ है, लगता है जल्दबाजी में तैयार होकर आई हो, तभी उस तरफ ध्यान नहीं गया। अयान की कहते ही आयु ने जल्दी से अपने बालों से उसे कवर कर लिया। कुछ ही देर में पूजा संपन्न हो चुकी थी और उसके बाद थोड़ी देर में पार्टी शुरू होने वाली थी। पूजा हो जाने के बाद गौरवी जी सबसे पहले आरव और आयु के पास गईं। उन्होंने आरव से कहा, मैंने तुम्हें आयु को बुलाने के लिए भेजा था और उल्टा तुम उसी के साथ बिजी हो गए। तुम्हें पता है ना, मुझे रिचुअल्स में किसी तरह की देरी पसंद नहीं है। ठीक है ना दादी, सब अच्छे से हो तो गया, अब आप क्यों गुस्सा कर रही हो? आरव ने जवाब दिया। गौरवी जी को नाराज देखकर आयु सारा मामला अपने ऊपर लेते हुए बोली, सॉरी दादी, वो मेरी वजह से ही। आयु बोल रही थी तभी गौरवी जी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, तुम कब से ऐसी हो गई? इसकी गलती आपने सिर क्यों ले रही हो? खैर छोड़ो, इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं है। पार्टी के टाइम दोनों बच्चे बाहर नहीं आएंगे, मैं नहीं चाहती इतने लोगों की बुरी नज़र उन पर पड़े। कम ऑन दादी, आरव ने आइज रोल करके कहा, आप इतनी मॉडर्न हैं और फिर भी ऐसी बातें कर रही हैं, बुरी नज़र जैसा कुछ नहीं होता, और वैसे भी मैंने एक नैनी को बुलाया है, वो दोनों बच्चों का पार्टी में अच्छे से ख्याल रख लेगी। गौरवी जी ने नामे सिर हिलाकर कहा, मुझे किसी नैनी पर यकीन नहीं है, वैसे भी मेरा पार्टी अटेंड करने का मूड नहीं है, तुम लोग पार्टी एन्जॉय करो, मैं मेरे बच्चों के पास रह लूँगी। मम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, छवि उनका साथ देते हुए बोली, मैं और मम्मी जी दोनों ही बच्चों का ख्याल रख लेंगे, मेरा भी आजकल पार्टी वगैरह में जाने का मन नहीं करता, तुम जानते हो अभी मेरा ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ और डॉक्टर ने मुझे शोर शराबे से दूर रहने के लिए कहा है। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, लेकिन नैनी तो आ रही है, आप दोनों की हेल्प हो जाएगी और आप भी ज़्यादा परेशान नहीं होंगी, ये दोनों बच्चे भले ही इतने छोटे हों लेकिन इतने छोटे होकर भी बहुत शैतान हैं, आरव ने कहा, जिस पर आयु ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा और जवाब में बोली, तुम्हें मेरे बच्चों से प्रॉब्लम क्या है? जब देखो यही बोलते रहते हो, बहुत शैतान है, बहुत शैतान है, कभी अपनी तरफ देखा है तुमने? छवि आंटी बताती है मुझे कि तुम बचपन में कितनी शैतानी करते थे, आगे से तुमने ऐसा कहा ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होने वाला। बातों की बातों में उन्होंने डिसाइड कर लिया था। आरव ने एक नैनी को हायर किया था जो आज आने वाली थी। छवि और गौरवी जी पार्टी में थोड़ी देर रुकने के बाद बच्चों के पास चली जाएंगी, तब तक नैनी उनका ख्याल रखेगी। वो लोग बातें कर रहे थे, आरव की हायर की हुई नैनी आ गई। वो लगभग 27 से 28 साल के करीब की एक लड़की थी। उसे देखते ही गौरवी जी हैरानी से बोली, ये तो बहुत छोटी लग रही है, इसकी तो शादी भी नहीं होगी, ये बच्चों को संभाल लेगी क्या? उनकी बात सुनकर वो मुस्कुरा कर बोली, येस ऑफ कोर्स मैम, मुझे इसके अच्छा एक्सपीरियंस है और मैंने ट्रेनिंग भी ली है, मेरा नाम साहिब अंसारी है, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। आरव तो उससे पहले ही मिल चुका था। कुछ ही देर में पार्टी के गेस्ट आने लगे तो आरव ने आरव्य और आर्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी साहिबा को दी। साहिबा उन्हें लेकर गौरवी जी के कमरे में थी। पार्टी का अरेंजमेंट गार्डन एरिया में किया गया था। दोनों बच्चों को साहिबा को सौंपने के बाद आरव आयु के पास आया तो आयु का चेहरा उतरा हुआ था। उसने धीरे से आरव को कहा, आरव, पता नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा अपने बच्चों को किसी और को देते हुए, ये जरूरी
है क्या? मैं रख लेती हूँ उनका ख्याल, मेरा वैसे भी ये पार्टी वगैरह अटेंड करने का इतना मूड नहीं है। आयु, अब तुम ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हो, बच्चे बड़े भी होंगे, कल को बाहर भी जाएंगे, तुम कब कब उनके साथ घूमती रहोगी? तुम्हें हॉस्पिटल नहीं ज्वाइन करना क्या? साहिबा एक अच्छी लड़की है, मैंने उसका बैकग्राउंड चेक करके ही उसे रखा है, उसे काम करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और वैसे भी कुछ देर में दादी और मॉम उनके पास चली जाएगी, आरव ने आयु को समझाया। फिर भी आयु का दिल अभी भी दोनों बच्चों में ही अटका हुआ था। गौरवी और छवि अभी पार्टी में ही थी, तो वहीं साहिबा दोनों बच्चों के साथ अकेली थी। अभी तक आरव्य और आर्या सो रहे थे, इसलिए साहिबा को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। वो उन दोनों बच्चों के साथ पास में बैठी अपने मोबाइल में लगी हुई थी, तभी उसके पास एक कॉल आया। कॉल रिसीव करने से पहले साहिबा ने इधर उधर देखा, जब उसे आसपास कोई नजर नहीं आया तो उसने कॉल रिसीव करके धीरे से कहा, अभी नहीं, अभी सही टाइम नहीं है, अगर मैं अभी उन्हें लेकर निकाली तो वो हमें आसानी से ढूंढ लेंगे, पार्टी जब जोरों पर होगी तब मैं दोनों बच्चों को लेकर निकल जाऊंगी, और आप चिंता मत कीजिए सर, मैं आपके प्लान पर आज भी नहीं आने दूंगी। बोलते हुए साहिबा ने आरव्य और आर्या की तरफ देखा और फिर कॉल कट कर दिया। साहिबा उन दोनों बच्चों को जिस हिसाब से देख रही थी उससे एक बात तो साफ थी कि वो किसी नेक इरादे से वहां नहीं आई थी, बस उसे एक सही वक्त का इंतजार था जब वो दोनों बच्चों को लेकर वहां से निकल सके।